भागवत सार की श्रृंखला में आज चौथे स्कंद के तीसरे अध्याय पर चर्चा है, जिसका शीर्षक है श्री शिव जी और सती देवी का संवाद। इसके पहले श्लोक को दोहराइए। मैत्रेय उवाच, सदा विद्विषतोरेवम् कालो वै क्रियमाणयः जामातुः श्वशुरस्यापि सुमहानतिचक्रमे। मैत्रेय उवाच, सदा विद्विषतोरेवम् कालो वै ध्रियमाणयः जामातुः श्वशुरस्यापि सुमहानतिचक्रमे। मैत्रेय उवाच, सदा विद्विषतोरेवम् कालो वै ध्रियमाणयः जामातु श्वशुरस्यापि सुमहानतिचक्रमे। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ने कहा, सदा निरंतर विद्विषतो तना एवं इस प्रकार कालः समय वै निश्चय ही ध्रियमाणयो सहन करते हुए जामातुः दामाद को श्वशुरस्य ससुर का अपि भी सुमहान अत्याधिक अतिचक्र में बीत गया। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, मैत्रेय ने आगे कहा, इस प्रकार से जामाता शिव तथा श्वशुर दक्ष के बीच दीर्घ काल तक तनाव बना रहा। तात्पर्य, पिछले अध्याय में विदुर ने मैत्रेय से प्रश्न किया था कि शिव तथा दक्ष के बीच मनोमालिन्य अर्थात कलह का क्या कारण था। दूसरा प्रश्न है कि दक्ष तथा उनके दामाद के बीच होने वाले इस कलह से सती ने अपना शरीर नष्ट क्यों किया। सती द्वारा शरीर त्याग का मुख्य कारण यह था कि दक्ष ने दूसरा यज्ञ प्रारंभ किया जिसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। सामान्यतः जब कोई भी यज्ञ किया जाता है तो सभी देवताओं विशेषतः ब्रह्मा शिव तथा अन्य प्रमुख देवता इंद्र तथा चंद्र को आमंत्रित किया जाता है और वे सम्मिलित होते हैं। यद्यपि प्रत्येक यज्ञ का ध्येय भगवान विष्णु को तुष्ट करना होता है, कहा जाता है कि जब तक सब देवता उपस्थित ना रहें तब तक कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होता। लेकिन दामाद तथा श्वशुर के बीच तनाव के होते हुए ही दक्ष ने दूसरा यज्ञ प्रारंभ कर दिया जिसमें शिव जी को आमंत्रित नहीं किया गया। ब्रह्मा ने दक्ष को मुख्य प्रजापति के रूप में नियुक्त किया था और वह ब्रह्मा जी का पुत्र था ही, अतः उसका पद ऊंचा था और जिससे उसको बहुत घमंड होने लगा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएंगे। सबके पास पेपर है,
सर्वशास्त्राधिपीयूष सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तो दिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता। परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु ते। मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तु ते। असाधु साधु तदायीन अतिनीच चतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मा प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरा।
हरे कृष्णा। तो तीसरा अध्याय, कल दूसरे अध्याय में हम लोग देख रहे थे कि कैसे शिवजी का अपमान हुआ, शिवजी उठकर चले गए लोगों ने एक दूसरे को बहुत सारे श्राप देना प्रारंभ किया, नंदी ने ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों ने नंदी को इत्यादि। तो अभी इस अध्याय का प्रारंभ कर रहे मैत्रेय मुनि कि इस बात को बहुत समय हो गया, दीर्घ काल, लेकिन उतने समय तक जो द्वेष था, तनाव था, वो बना रहा। अर्थात न शिवजी ने बात की दक्ष से, न दक्ष ने बात की, न शिवजी गए उनके घर, न दक्ष उनके घर आए, जबकि दोनों संबंधी थे, श्वशुर हैं शिवजी के दक्ष, लेकिन कोई बातचीत नहीं। और दीर्घ काल मतलब बड़े लंबे समय तक। तो देखिए, जब व्यक्ति द्वेष करता है और उसको हृदय में रख लेता है, समाप्त नहीं करता, तो क्या क्या इसका फल होता है, अब इस अध्याय से हम लोग देख रहे हैं और आगे के अध्यायों में देखेंगे कि क्योंकि दक्ष ने उस द्वेष को समाप्त नहीं किया तो क्या क्या फल हुआ। आगे चलकर सती को अपना देह त्यागना पड़ा, दक्ष को अपनी गर्दन कटवानी पड़ी, बहुत बड़ा विध्वंस हुआ। इतना सब हो गया केवल एक व्यक्ति के द्वेष के कारण। इसलिए ये द्वेष ये कभी सुखी नहीं रहने देता और केवल विध्वंस नाश का कारण बनता है। ये इन अध्यायों में हम लोग सीख सकते हैं। अपनी ही पुत्री की मृत्यु का कारण बना दक्ष, अपने गले कटने का कारण बना दक्ष, लेकिन द्वेष को त्याग नहीं सका। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पुत्री अपने देह त्याग रही है लेकिन फिर भी अपने द्वेष को बनाए हुए हैं। तो इसीलिए इन इन भागवतम के अध्यायों से हमें जान लेना चाहिए कि हृदय में अगर किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष है, जितना जल्दी हो उसको समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि ये द्वेष जब बढ़ता है तो फिर ये विध्वंस और नाश का कारण बनता है, बस, और कुछ नहीं होता द्वेष से। जो व्यक्ति द्वेष करता है उसका भी नाश होता है और जिससे वो द्वेष कर रहा है उसका भी नुकसान होता है। जैसे दक्ष स्वयं द्वेष कर रहे थे, अपना गला कटवाना पड़ा, विध्वंस हुआ, लेकिन द्वेष शिवजी से कर रहे थे तो शिवजी को अपनी पत्नी को खोना पड़ा, तो दोनों और नुकसान हुआ। ऐसा नहीं है कि द्वेष करने वाले, हाँ द्वेष करने वाले का ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन अपने द्वेष के कारण वो अन्यों को भी दुख और कष्ट पहुंचाता है। इसलिए इस द्वेष से परे रहना चाहिए। और द्वेष कैसे होता है? द्वेष ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष होगा तो पता चलेगा। हमारा द्वेष कई तरह से प्रकट होता है। हम किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छा होते देख लेते हैं, द्वेष हो जाता है। सरल, बस इतना ही। उस व्यक्ति ने आपको कुछ नहीं किया, वो व्यक्ति आपका बुरा नहीं चाहता, लेकिन आपने उसके जीवन में कुछ अच्छा होते हुए देख लिया, उसको बढ़ते हुए देख लिया, तो द्वेष हो जाता। भक्ति मार्ग में इस द्वेष को त्यागना बहुत आवश्यक है। हम जब एक दूसरे को भक्ति में आगे बढ़ते देखें, जिम्मेदारियां लेते देखें, बहुत बड़े बड़े कार्य करते देखें भक्ति में, भले ही वो व्यक्ति हमसे कई साल बाद आया हो, हमें प्रसन्नता होनी चाहिए, द्वेष नहीं। हमें उसको सहयोग करना चाहिए, द्वेष नहीं। तो यहां पर दक्ष इतना द्वेष और दीर्घ काल तक चल रहा। तो ये जान लीजिए दीर्घ काल शब्द क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि द्वेष को जितना जल्दी हो समाप्त कर देना चाहिए। द्वेष अग्नि की तरह है। चाणक्य पंडित कहते हैं कि अग्नि को और लोन जो हमने लिया है कर्ज, जितना जल्दी हो उसको खत्म करना चाहिए, उसको बहुत लंबा नहीं बढ़ाना चाहिए। तो द्वेष ये अग्नि की तरह है, अगर हम उसको तुरंत समाप्त नहीं करेंगे तो फैल जाता है। जैसे अग्नि कहीं पर लग गई है, आप उसकी ओर ध्यान नहीं दोगे तो धीरे 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 सारा जलकर खाक कर देगी, जो भी चीज है उसको जला देगी, और ये बहुत सारी चीजों को जलाती है। हम लोग को अनुभव है, गोकुल धाम प्रोजेक्ट में जब पहले छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे घास का, उसके ऊपर उन्होंने घास डाली हुई थी, घास की थी कुटिया। एक दिन सब लोग वो भी वर्षा ऋतु के समय सब लोग मंगल आरती में थे, भगवान की आरती कर रहे थे और किसी कारणवश उसमें आग लग गई और उनको पता ही नहीं चला, क्योंकि वो आरती कर रहे थे, वो थोड़ा सा दूर थे और इतनी आग लगी, इतनी आग लगी कि उनके जो ट्रंक रखे हुए थे, कपड़े जिसमें वो लोग रखते थे उस समय, उसके अंदर आग घुसकर उनके कपड़ों को जला दिए। उस दिन ऐसा हुआ था, उनके पास नहाने के लिए अपने गमछे भी नहीं बचे थे कपड़े तो भूल जाइए, सब कुछ जला दिया, कपड़े फैले थे वहां क्योंकि बारिश का समय था, उन्होंने सब अंदर फैला रखे थे, कपड़े फैले थे, उनकी अन्य चीजें थी, किताबें थी, सब जला दिया कुछ ही समय में। और जब मंगल आरती में जब जा रहे थे, सब कुछ अच्छा था, मंगल आरती करके आए, सब खत्म। ये अग्नि है। तो ऐसा ही द्वेष है, कहां से कैसे घुसता है, कैसे समाप्त करता है पता नहीं चलता। व्यक्ति को तो ये भी नहीं पता चलता कि मैं द्वेष कर रहा हूं। ये इस द्वेष का एक बहुत बड़ा दुर्गुण है कि द्वेष करने वाले व्यक्ति को पता नहीं चलता कि वो द्वेष कर रहा है। उसे लगता है मैं सही कर रहा हूं, ये लोग क्यों मेरे विरुद्ध है। लोग विरुद्ध होते हैं, जैसे यहां पर अभी आगे आएगा वर्णन, शिव जी कहेंगे कि द्वेष कौन कर रहा है, तो दक्ष को पता नहीं चल रहा था कि वो द्वेष कर रहा है, वो तो सोच रहे शिव ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा है। शिव जी तो वैसे थे नहीं, शिव जी महान व्यक्ति हैं, उनके हृदय में दक्ष के प्रति भी कोई क्रोध नहीं था। दक्ष ने इतना सब कह दिया, शिव जी चुप बैठे रहे, लेकिन फिर भी दक्ष को लग रहा था कि ये मेरा विरोध करता, ये द्वेष है। देखिए शिव जी ने कोई विरोध नहीं किया, कभी कहीं किसी से बात भी नहीं की, ऐसा नहीं कि जाकर सबको बता रहे थे शिव जी देखो दक्ष ऐसा है, इसने मेरे मुझे ऐसे कह दिया। मैंने उन्होंने सती देवी से भी ज्यादा बात नहीं की हालांकि सती देवी जानती थी, लेकिन शिव जी ने नहीं। हर रोज शिव जी ये नहीं बताते थे देखो तुम्हारे पिता ने ऐसा किया, तुम्हारे पिता ने वैसा, बिल्कुल बात नहीं की। और ऐसे व्यक्ति से वो द्वेष कर करके वो चिंता में। तो दीर्घ काल के बाद भी जब दक्ष ने यज्ञ किया, तो इस अध्याय के प्रारंभ के पहले चार श्लोक दक्ष के दूसरे यज्ञ का वर्णन करते हैं। तो दक्ष ने जब यज्ञ प्रारंभ किया, ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रजापतियों का प्रमुख बना दिया और उसके बाद उन्होंने यज्ञ किया, वाजपेय यज्ञ और बृहस्पति सव, ये दो यज्ञ किए। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि बृहस्पति सव यज्ञ करने के पहले व्यक्ति को वाजपेय यज्ञ करना होता है, ये शास्त्र का नियम है, जो लोग यज्ञ करते हैं ये उनके लिए है। तो यज्ञ किया और स्वाभाविक है कि अब इतने, देखिए दीर्घ काल शब्द क्यों महत्वपूर्ण है यहां श्लोक में, कि दीर्घ काल हो गया तो भी दूसरा यज्ञ कर रहा है, बुलाया नहीं शिव जी को आमंत्रण नहीं दिया, सब देवताओं को बुलाया, जितने देवता थे सबको आमंत्रण दिया लेकिन शिव जी को नहीं। इसीलिए इस द्वेष को बहुत लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए, केवल नाश का कारण है। और द्वेष को समाप्त करने का क्या उपाय है, अगर हमारे हृदय में द्वेष है, सबसे पहले समझना चाहिए कि मेरे अंदर द्वेष है। हम तो ये सोचते हैं वो व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति गलत है, ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, हम ये नहीं सोच पाते कि मैं द्वेष कर रहा हूं लोगों से, इसीलिए वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। जैसे शिव जी क्यों नहीं बात कर रहे थे, शिव जी बाकी सबसे मिलते थे, बाकी सब देवताओं के पास जाते, लेकिन दक्ष के पास कभी नहीं इतने समय तक, क्यों? क्योंकि दक्ष द्वेष कर रहा। तो पहली चीज जानना, और दूसरी चीज लोगों की सराहना करना प्रारंभ करना। अगर द्वेष है हृदय में किसी भी व्यक्ति के प्रति, तो प्रयास कीजिए हृदय से उसके अच्छे गुणों को देखने का। मान लीजिए आपके हृदय में किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष है, ये व्यक्ति हमेशा मेरे साथ ऐसा करता, इसका अर्थ है कि आपके हृदय में द्वेष है।
व्यक्ति को पहले अपनी कमियों को जानना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि जब हम एक उंगली किसी और की तरफ करते हैं तो तीन उंगलियां हमारी तरफ आती हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत सुंदर उदाहरण देते थे कि एक छलनी होती है, उसके अंदर इतने छेद हैं, लेकिन जब वो एक सुई को देखती है जिसके अंदर केवल एक छेद है तो वो सुई की ओर उंगली उठाकर दिखाती है कि देखो देखो तुम्हारे अंदर छेद है, लेकिन वो भूल जाती है छलनी कि मेरे अंदर इतने सारे छेद हैं, एक छेद है केवल सुई में। तो द्वेष ये है। तो इसीलिए दूसरा चीज, सराहना करना सीखिए। उस व्यक्ति के छिद्र को मत देखिए, उस व्यक्ति के गुणों को देखिए। ऐसा कोई व्यक्ति इस जगत में नहीं है जिसमें अच्छे गुण नहीं हो। रावण में भी अच्छे गुण थे, हिरण्यकश्यपु में अच्छे गुण थे। इसलिए अच्छे गुण ना हो यह हो नहीं सकता। हाँ, यह हो सकता है कि बहुत ज्यादा बुरे गुण हैं लेकिन अच्छे गुण भी हैं। तो अगर द्वेष को समाप्त करना है तो दूसरी चीज करनी चाहिए, हमें उसके अच्छे गुणों को देखकर उसकी सराहना करनी चाहिए। बहुत सारे अच्छे गुण भक्तों में हो सकते हैं, विशेषतः भक्तों के लिए ये बात है कि अगर हमें आपस में द्वेष हो जाए, हम एक दूसरे के प्रति द्वेष करने लगे, हमें वो व्यक्ति की शक्ल देखकर गुस्सा आने लगे कि ये सामने क्यों आ गया, अर्थात उसकी गलती नहीं, हमारा द्वेष बहुत बढ़ गया। तो अपने द्वेष को पहचाने सबसे पहले। और पहचानने का क्या मार्ग है, अगर हमें किसी व्यक्ति को देखकर क्रोध आ रहा है, अगर हमें किसी व्यक्ति की शक्ल देखने में रुचि नहीं है, अगर हमें किसी व्यक्ति से ये लग रहा है कि ये हमेशा मेरी निंदा क्यों करता है, ये सारे लक्षण हैं कि हमारे अंदर द्वेष है। तो पहली चीज पहचानना, दूसरी चीज उस व्यक्ति के गुणों को हृदय से सराहना करना, बाहरी दृष्टि से नहीं। जैसे आप जाकर उस व्यक्ति को बोलें कि आप बहुत अच्छा गाते हो, तो व्यक्ति बोले आप क्यों मुझे बता रहे हो, मुझे पता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो आप बोलो, है बोला ना अच्छा गाते, और क्या करूंगा, अभी इतना द्वेषी व्यक्ति है। हृदय से कि ये सही में बहुत अच्छा गाता है। तो ऐसे ये सराहना। और तीसरी चीज द्वेष को दूर करने के लिए, उस व्यक्ति को बिना बताए उसकी सेवा करनी चाहिए, द्वेष चला जाएगा। हाँ, ये करना बड़ा कठिन है, सुनने में अच्छा लगता है, बस इतना ही करना है, व्यक्ति की सराहना करनी है और उसकी सेवा करनी है, होता नहीं है। जब करने जाते हैं तो लगता है इस व्यक्ति की सेवा बिल्कुल नहीं, इसमें क्या लक्षण है, क्या गुण है, देखो मंगल आरती भी नहीं आता। हम फिर दोष देखने लगते हैं, सेवा करने जा रहे हैं लेकिन दोष देखने लगते हैं। इसीलिए द्वेष को दूर करने के लिए तीन चीजें आवश्यक हैं। पहले पहचानना कि मुझे द्वेष है, ये नहीं जानना कि अलग दूसरे लोग गलत हैं, ये जानना कि दोष मुझ में है, द्वेष मुझ में है, और मेरे द्वेष के कारण लोग मुझसे दूर जा रहे हैं। दक्ष समझ नहीं पाया, वो सोच रहा था शिव जी नहीं आ रहे मेरे घर, कोई बात नहीं, सती नहीं आ रही, क्योंकि शिव जी नहीं जा रहे थे सती भी नहीं जा रही थी, तो काफी समय तक सती भी नहीं गई अपने घर पर। तो दक्ष ने ये सोचा नहीं कि क्यों नहीं आ रही, मेरी पुत्री है, मेरा ही जमाता है, ठीक है जो भी हो गया, लेकिन वो सोचने का नहीं आ रहे, नहीं आए, अपने घर खुश रहे। ये नहीं सोच पाया कि मेरे हृदय में द्वेष के कारण वे लोग मुझसे दूर हैं। तो पहली चीज पहचानना, दूसरी चीज उसका गुणगान करना, और तीसरी चीज उनकी सेवा करना। तो इससे बहुत जल्दी हृदय से द्वेष चला जाता है। तो यज्ञ करने लगे, बृहस्पति सव यज्ञ, शिव जी को नहीं बुलाया। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर शिव जी को नहीं बुलाया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? यज्ञ तो भगवान विष्णु के लिए होता है, यज्ञ विष्णु की संतुष्टि के लिए किया जाता है, तो अगर शिव जी जैसे महान भक्त को नहीं बुलाया तो उसमें क्या कोई त्रुटि है, कोई कमी है? प्रभुपाद कहते कमी है। ये यज्ञ में उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया, ये कमी है, क्योंकि वो कहते हैं भगवान विष्णु कभी प्रसन्न नहीं होते जब उनके भक्तों का अपमान करके उनकी पूजा की जाए। यज्ञ वो कर रहे थे विष्णु की संतुष्टि के लिए, लेकिन अपमान कर रहे थे शिव जी का, विष्णु संतुष्ट नहीं होते। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर यज्ञ है या कोई भी अनुष्ठान है, भगवान का अर्थ है भगवान और उनके भक्त, कभी भी दोनों को अलग नहीं करना चाहिए। जहां भगवान है वहां भगवान के भक्त हैं, इसीलिए श्री कृष्ण की पूजा कभी अकेले नहीं की जाती, या तो श्रीमती राधा रानी के साथ होती है, या गायें तो कम से कम होनी चाहिए, कोई तो भक्त होने चाहिए भगवान के। तो इसीलिए प्रभुपाद समझाते हैं कि ये यज्ञ में भक्त को नहीं बुलाया और विष्णु को, तो ये जान लीजिए बहुत महत्वपूर्ण बात कि हम भगवान की तो भक्ति करें। जैसे दक्ष हैं, यज्ञ कर रहे हैं विष्णु की संतुष्टि के लिए, उन्हें तो सब कुछ प्राप्त होना चाहिए, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने भक्त का अपमान किया, शिव जी को नहीं बुलाया। तो इसीलिए भक्त के केवल भगवान को प्रसन्न करना ये परिपूर्ण नहीं है। इन भक्ति के छोटे छोटे महत्वपूर्ण रहस्यों को समझिए। जब कहा जाता है कि भक्ति करना, भगवान ने जब अर्जुन को कहा कि मैं तुम्हें रहस्य बता रहा हूं, गूढ़ रहस्य, क्या रहस्य है भक्ति का? सब जानते हैं भगवान की पूजा कैसे करनी है, सारे शास्त्रों में लिखा है, तो रहस्य क्या है उसमें? भगवान बोलते बहुत गुह्यम, बहुत गुह्य ज्ञान दे रहा हूं, गुह्य तमम, सबसे गुह्य ज्ञान। क्या गुह्य ज्ञान है? हम सब जानते हैं भगवान की भक्ति कैसे, गुह्य ये हैं, ये सीक्रेट्स हैं, ये राज हैं, इसको जानिए कि भक्ति भगवान की, अगर हम भगवान को बहुत प्रसन्न कर रहे हैं, भक्तों को प्रसन्न नहीं कर रहे, भगवान प्रसन्न नहीं होते। और केवल भगवान को प्रसन्न करना भी परिपूर्ण नहीं है। अगर कोई सोचे कि मैं ठीक है केवल भगवान की भक्ति करता रहूंगा, भक्तों को तंग भी नहीं करूंगा, कोई कष्ट नहीं दूंगा। कभी कभी लोग कहते हैं कि मैं अपने घर में है, मेरे विग्रह हैं, भगवान की भक्ति कर रहा हूं बस, मंदिर आने की क्या आवश्यकता है, अन्य कार्य क्या जरूरी है? तो ये ध्यान लीजिए, प्रभुपाद लिख रहे हैं केवल भगवान को प्रसन्न करना पूर्ण नहीं है, उनके भक्तों को प्रसन्न करना ही चाहिए, उनके भक्तों की सेवा करनी ही चाहिए। क्यों? आराधना नाम सर्वेशां विष्णुर आराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम सम अर्चनम। शिव जी कहते हैं कि आराधनाओं में, सारी आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ आराधना विष्णु की है, लेकिन उससे भी परे तस्मात् परतरम देवी, उनके भक्तों की आराधना। और भगवान भी कहते हैं मद भक्ता पूज्या विधिकहा, मेरे भक्तों की पूजा मुझसे अधिक करनी चाहिए, वो मुझे प्रिय है। और यहां दक्ष ने उस सिद्धांत को तोड़ दिया, तो उन्होंने यज्ञ किया, बुलाया नहीं, तो ऐसे यज्ञ का वर्णन है। फिर पांचवें श्लोक से आगे वर्णन करते हैं चौदहवें श्लोक तक, कि कैसे सती देवी अलग अलग कारण देकर प्रयास कर रही थी शिव जी को यह समझाने का कि हमें जाना चाहिए। क्योंकि सती देवी ने देख लिया कि यज्ञ हो रहा है, उन्होंने देखा कि लोग अपने अपने, सारे देवता अपने अपने विमानों में बैठकर, और उनकी जो पत्नियां हैं वो बहुत सज धज कर आभूषण धारण करके जा रही हैं। तो सती ने देखा कहां जा रही हैं, तो उन्होंने सुना उनकी बातों को, तो वो कह रही थी अरे दक्ष प्रजापति बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, सारे देवताओं को बुलाया है। अब ये तो उनकी पुत्री है, अभी तक तो चुप थी, चलो कुछ नहीं हो रहा था, जानती थी शिव जी के बीच मनमुटाव है, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अब कैसे चुप रहे? इतना बड़ा अनुष्ठान उनके ही घर में हो रहा है, तो कैसे नहीं जाए? तो क्यों जाना चाहती थी, उन कारणों को वो आगे के श्लोक में देती हैं। तो वो बोलना शुरू करती हैं शिव जी से, और शिव जी को कहती हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पिता एक यज्ञ कर रहे हैं, वो कहती हैं आपके श्वशुर यज्ञ कर रहे हैं। मतलब आपका कर्तव्य है जाना, वो आपसे संबंधित है, आपके संबंधी है। अगर वो कहती मेरे पिता कर रहे हैं तो शिव जी कहते तुम्हारे पिता है ना, मेरा क्या लेना देना, बोले नहीं आपके ससुर हैं। तो कहती कि आपके श्वशुर एक यज्ञ कर रहे हैं। तो पहली चीज, पहला कारण उन्होंने दिया कि आपको जाना चाहिए क्योंकि वो आपके श्वशुर हैं, आपके संबंधी हैं, ठीक है, इसलिए नहीं कि मेरे हैं, आपके। देखिए बड़ी चतुराई से उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा दूसरा कारण वो देती हैं कि सारे देवता जा रहे हैं, आप भी जाना चाहिए, जब सारे देवता जा रहे हैं तो आपको जाने में क्या तकलीफ है। हाँ अगर ऐसा होता कि कहीं कोई नहीं जा रहा, आधे जा रहे हैं आधे नहीं, सारे जा रहे हैं देवता। और उन्होंने अभी अभी देखा था कि जो स्त्रियां हैं उन्होंने बड़े अच्छे वस्त्र धारण किए, आभूषण धारण किए। प्रभुपाद लिखते हैं कि अवसरों पर अर्थात विवाह यज्ञ और अनुष्ठान इत्यादियों पर स्त्रियों को आभूषण धारण करने चाहिए, अच्छे वस्त्र पहनने चाहिए, इससे सारा जो वातावरण है वो शुभ हो जाता है, प्रसन्नता फैलती है। ये एक प्रसन्नता का सूचक है, हम अच्छे कपड़े पहने, आभूषण इत्यादि धारण करें। हाँ ये केवल स्त्रियों के लिए कहा गया है, अब ब्रह्मचारी इत्यादि ना सोचने लगे ये सब कि हमें भी अच्छे कपड़े पहनने हैं, आभूषण वगैरह धारण करने हैं। हाँ लेकिन फिर भी सबको कपड़े तो स्वच्छ और नए पहनने चाहिए, नियम है कि उत्सवों पर नए कपड़े पहनने चाहिए या कम से कम एकदम स्वच्छ अच्छे कपड़े। ऐसा नहीं कि उत्सव हो रहा है हम बस घर से उठे, आंखें मली, जो कपड़े पहने हैं आ गए, बैठ गए भगवान का अभिषेक देखने के लिए, बिल्कुल नहीं, उत्साह नहीं होगा ना आपको ना दूसरों को। तो इसका ये नियम है, क्यों उत्सवों के दिन अच्छे कपड़े और जो स्त्रियां हैं वो आभूषण इत्यादि धारण करती हैं, तो ताकि सब कुछ शुभ हो जाए और एक अच्छा वातावरण बने। तो इसीलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि करना चाहिए। तो उत्सवों को मनाने के लिए उत्साह होना चाहिए। मान लीजिए बहुत बड़ा उत्सव हम लोग कर रहे हैं, जन्माष्टमी इत्यादि, और हम सब ऐसे ही गंदे फटे हुए कपड़े पहनकर घूम रहे हैं तो क्या उत्सव, क्या उत्साह दिखाई देगा। तो इसीलिए उत्सवों के दिवस पर हमें नए कपड़े धारण करने चाहिए, और अगर नए ना हो सके तो कम से कम सबसे अच्छे अपने कपड़ों में, सारे अच्छे कपड़ों को आपको पहनना चाहिए। तो ऐसे यज्ञ प्रारंभ तो उन्होंने देख लिया था, तो उन्होंने पहला कारण दे दिया कि आपके ससुर हैं, दूसरा कहा सभी देवता जा रहे हैं, और फिर उन्होंने कहा कि मेरी सारी बहनें वहां आने वाली हैं, 15 और बहनें थी उनकी, ये तो 16वीं पुत्री थी, तो मेरी सारी बहनें अपने अपने पतियों के साथ आने वाली हैं, और अगर मैं नहीं जाऊंगी तो कितना खराब लगेगा, सारी आ रही हैं। उन्होंने कहा मैं उनसे मिलना भी चाहती हूँ, बहुत समय हो गया। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि क्योंकि इस द्वेष के कारण शिव जी बहुत लंबे समय तक गए नहीं थे घर में, तो किसी से मिली नहीं थी सती देवी, और इस अवसर पर तो सब आने वाली थी एक साथ, तो उन्होंने कहा कि सारी बहनें आ रही हैं, मेरी अन्य जो रिश्तेदार हैं वो सब वहां पर आएंगे, तो मैं उन सब से कहां मिल पाती हूं, तो ये अवसर है मैं मिलना चाहती हूं। मतलब अपनी इच्छा उन्होंने बाद में बताई, पहले शुरुआत नहीं की। देखिए बोलने का तरीका, कैसे लोगों को कन्विंस करना चाहिए, वैसे पत्नियों को ये सीख लेना चाहिए कैसे पति को एकदम मना लेना है। तो पहले उन्होंने कहा आपके ससुर हैं, सारे देवता जा रहे हैं, मेरी भी इच्छा है मैं भी जाना, मेरी अभी अच्छा नहीं कहा, उन्होंने कहा मेरी बहनें आ रही हैं, तो मतलब अभी तक ये नहीं कहा कि मेरी इच्छा है जाने की, बहनें आ रही हैं तो नियम के अनुसार जाना पड़ेगा। तो ये सब कारण वो बता रहे हैं, और फिर वो कहती हैं मैं भी उनसे बहुत मिलना चाहती हूँ, बहुत दिनों से मिली नहीं हूँ। तो एकदम अंत में बाद में वो कहने लगी कि मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ, और फिर उन्होंने कहा कि केवल मिलना ही नहीं चाहती हूँ, मैं यज्ञ भी देखना चाहती हूँ। तो देखिए मानो शिव जी अगर उन्हें कहे क्या जरूरत है अपने बहनों की मिलने की, अच्छा तो यज्ञ तो हो रहा है वो तो देखना चाहिए, भगवान का यज्ञ देखने में क्या गलती है। तो उन्होंने कहा मैं यज्ञ देखना चाहती हूँ, तो मानो भगवान शिव जी अगर उनसे कहें, ये मन उनके मन में सारे प्रश्न आ रहे थे कि शिव जी क्या पूछेंगे, तो उन्होंने सोचा कि मानो अगर वो कहें कि ये सब क्यों, हमें अनासक्त तो होना चाहिए, एक जगह बैठकर भगवान का स्मरण करो, वो यज्ञ देखने से ज्यादा अच्छा है। तो उन्होंने कहा शिव जी से, ऐसा मत सोचिए कि मैं आपकी तरह बहुत ऊंचे स्तर पर हूं। मैं एक साधारण स्त्री हूं, मुझे ये सब ज्ञान व्यान नहीं है, आप मुझे मत बोलिए कि सब अनासक्ति वगैरह, मैं स्त्री हूं, मैं जैसी हूं, मुझे रहने दीजिए। बोलिए मेरे से आशा मत कीजिए कि मैं आपकी तरह इतने ऊंचे स्तर पर रहूं, मुझे ये सब ज्ञान नहीं है, मैं साधारण स्त्री हूं, तो मुझे ऐसे ही रहने दीजिए। मतलब अगर शिव जी कहते कि ये सब क्या है, यज्ञ देखना, घर पे जाना, मित्रों से मिलना, अपने संबंधियों से मिलना, अरे अनासक्त तो होना चाहिए। देखो मैं, शिव जी जैसे कहें कि देखो मुझे, मैं कौन से अपने संबंधियों से मिलने जाता हूं, शिव जी के हैं ही नहीं कोई, तो किससे मिलने जाएंगे। कहां है शिव जी का परिवार बताइए, माता पिता उनके हैं, घर है, भाई है, आपको सारा परिवार शिव जी का है, सारे जुड़े हुए हैं। तो शिव जी उनसे, देखो मुझे, मैं जाता हूं कभी पेड़ के नीचे बैठकर जप कर रहा हूं, तुम भी बैठो, दूसरे पेड़ के बैठ नीचे बैठ जाओ, उसमें क्या तकलीफ। तो ये मुझसे ये सब आशा मत कीजिए, मैं साधारण स्त्री हूं, मैं आपकी तरह इतनी ऊंचे स्तर पर नहीं हूं भक्ति की, इसलिए मुझसे ये सब आशा मत कीजिए। और अगर आप ये कह रहे हैं कि आप जाना नहीं चाहते हैं, तो कम से कम दूसरों के लिए त्याग कीजिए, मेरे लिए मतलब। तो वो कहने लगी कि आपने पूर्व में जहर पी लिया था, आपने जहर पीकर क्या दिखलाया, आपने दिखलाया कि जहर पीकर आप दूसरों के लिए, अपने लिए तो जहर नहीं पिया था आपने, आपको तो कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन दूसरों की रक्षा के लिए, दूसरों की प्रसन्नता के लिए आपने जहर तक पी लिया, अब मेरी प्रसन्नता के लिए इनके घर तक नहीं आ सकते आप, इतना देखिए कितनी दक्ष है, दक्ष की पुत्री है इसीलिए दक्ष है, दक्ष मतलब एक्सपर्ट। तो कितने कहां कहां सारे कारण सोचकर बता, अभी शिव जी ने कुछ कहा ही नहीं, शिव जी ने कुछ नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि शिव जी ये कह रहे हैं, लेकिन वो सब सोच रही हैं कि आप ये कहोगे, अच्छा ये कहोगे, अच्छा ये। तो उन्होंने कहा कि भले ही आप दूसरों के उद्धार के लिए जहर पी सकते हो, मेरे लिए केवल मेरे पिता के घर तक नहीं आ सकते आप, ये तो गलत बात है। और फिर वो कहने लगी कि अगर आप सोच रहे हो, जैसे मानो उन्होंने मन में सोचा कि शिव जी कहेंगे कि ठीक है मैं चला भी जाता हूं, लेकिन उन्होंने बुलाया नहीं है मुझे, कैसे जाऊं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये जान लीजिए, पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर, संबंधियों के घर बिना बुलाए जा सकते हैं। एक पिता के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, पति के घर जाना चाहिए, गुरु के घर जाना चाहिए और मित्र के घर, तो इनके घरों में बिना बुलाए जा सकते हैं। मतलब सारे कारण वो सोच रही थी जो शिवजी देने वाले हैं, और उनके उत्तर पहले ही दे रही थी। तो उन्होंने कहा आप ये सोचेंगे कि बुलाया नहीं है तो कोई बात नहीं, पिता है, मानो वो कह रही हो कि इतनी बड़ी व्यवस्था कर रहे हैं, भूल गए होंगे बुलाने के लिए, क्या क्या तकलीफ है, यहाँ इतना बड़ा यज्ञ करना है, कितनी उनको चिंता होगी, भूल गए होंगे। और मान लीजिए नहीं बुलाया है तो अपने ही पिता ने, मेरे ही पिता हैं, घर वालों को बुलाने की क्या आवश्यकता, अब हमें पता चल गया हमें जाना चाहिए। तो ऐसे वो कारण दे रही थी। और फिर अंत में उन्होंने कहा कि कृपा करके मेरे ऊपर आप अपनी कृपा कीजिए, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूं, बाकी सबके ऊपर आप कृपा कर रहे हैं, भूतनाथ हैं, भूतों के ऊपर करते हैं, ज्ञानियों के ऊपर करते हैं, तमोगुणियों के ऊपर करते हैं, अरे मैं तो आपकी ही पत्नी हूं, यहां भी तो ध्यान दीजिए। जैसे वो कह रही हूं कि साधारणता ऐसा होता है, व्यक्ति सारे जगत का कल्याण करना चाहता है, अपने घर का नहीं करता है ना, भक्त होने के बाद भी ऐसा ही है। गृहस्थ जीवन में व्यक्ति भक्त हो जाता है, मंदिर में बड़ी सेवा करता है, लोगों के साथ बड़ा अच्छा करता है, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों को वो वैष्णव नहीं है, बाकी सारे वैष्णव हैं। तो वो यही कह रही हैं कि अरे आप सब पर कृपा करते हो, मैं तो पत्नी हूं, मेरा तो पहला अधिकार है, तो मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं आप कृपा कीजिए। तो ऐसा उन्होंने करीब 14 श्लोकों तक कहा। फिर 15वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक, अर्थात इस अध्याय के अंत तक, शिवजी उत्तर देते हैं। तो देखिए, एक तरफ सती देवी बड़ी एक्सपर्ट प्रश्न करने में या बोलने में, उनको मनाने में, अब दूसरी तरफ शिव जी वो भी कम थोड़ी हैं, दोनों एक्सपर्ट हैं। तब शिव जी ने उत्तर देना शुरू किया। तो पहला प्रश्न उन्होंने कहा था, पहले जैसे उन्होंने बताया था कि पिता के घर, गुरु के घर इत्यादि बिना बुलाए जाना चाहिए, तो शिव जी ने कहा निश्चित इन घरों में हम बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति आपके अंदर दोष ढूंढता है तब नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, सब एक से एक एक्सपर्ट है। सती देवी शास्त्र के अनुसार कह रही है गुरु के घर, पिता के घर, पति के घर, मित्र के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, शास्त्र कहता है। शिव जी कहते हैं सही है, लेकिन ये भी कहते हैं कि वो दोष ढूंढ रहा हो तो नहीं जाना चाहिए, तुम भूल गई हो। तो शिव जी पूरे उनके अभी उत्तर देंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो तुमने कहा वो सही है, लेकिन जो दोष ढूंढे उसमें नहीं जाना चाहिए। दरअसल जब शिव जी ने इस तरह सती के बाद सती से सुना, एक्चुअली शिव जी सब भूल चुके थे, लेकिन जैसे ही सती ने दक्ष का नाम लिया तो वर्णन है श्लोक में कि शिव जी मुस्कुराते हुए सती से बोल रहे हैं, लेकिन हृदय में उनको दुख हो गया, उनको वो सारी बातें याद आ गईं, वो शब्द याद आ गए जो दक्ष ने कहे थे। और प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य इसका देते हैं, शिव जी जैसे महान व्यक्ति को क्या आवश्यकता है वो चीजें याद करने की कि किसी ने उनके साथ कुछ कर दिया था बुरे शब्द, क्यों उनको, मतलब श्लोक में वर्णन है कि थोड़ा सा दुख हो गया हृदय में, तो क्यों दुख होना चाहिए? भगवान का भक्त तो सब कुछ समान होता है, सुख में दुख में उसको कोई चिंता नहीं। तो शिव जी एक चीज समझाना चाहते थे, श्लोक कहकर एक बात बताई गई कि जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, इस भौतिक जगत के दुख और सुख केवल कष्ट देंगे हमें। तो इस जगत के जो दुख होते हैं वो केवल दर्द देते हैं, बहुत दुख होता, कष्ट आते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में स्थित हैं, उनको अगर कष्ट भी होता है तो वो आनंद देता है। ये अंतर है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में। ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक जगत में दुख नहीं होता किसी को, दुख होता है। कृष्ण छोड़कर चले जाते हैं, सारी गोपियों को बड़ा दुख हुआ, यशोदा मैया को दुख हुआ, तो दुख होता है, लेकिन वो दुख आनंद प्रदान करता है। लेकिन इस भौतिक जगत में जो दुख होता है वो केवल दर्द कष्ट का कारण बनता है। तो ये दो चीजें प्रभुपाद समझाते, उदाहरण देते बहुत सुंदर कि जैसे श्री कृष्ण को यशोदा ने बांध दिया और श्री कृष्ण रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो बाहर से दिखने में तो लग रहा है अरे रो रहे, दर्द हो रहा होगा, दुख है तभी तो रो रहे, तो दुख नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं वो तो बड़ा आनंद आ रहा था, कृष्ण को रोने में आनंद आ रहा था, यशोदा ने बांध दिया तो रोने में आनंद। या कभी कभी हम लोग देखते गोपियों को कष्ट दिया भगवान ने, चले गए, तो उसमें भी आनंद है। तो ये आध्यात्मिक जगत के कष्ट और भौतिक जगत के कष्टों में अंतर ये है कि भौतिक जगत के कष्ट केवल दुख देते हैं, आध्यात्मिक जगत के कष्ट केवल आनंद देते हैं। इसीलिए भक्ति को केवल आनंद कंद कहा गया। केवल आनंद क्यों? क्योंकि दुख है तो भी आनंद है, सुख है तो भी आनंद है। कृष्ण कालिया के ऊपर, कालिया से युद्ध कर रहे हैं, यशोदा मैया इत्यादि इतना दुख, वो बेहोश हो गई देखकर कि मेरा पुत्र, इसका क्या होगा, लेकिन उसके द्वारा आनंद को बढ़ गया, वो एक दिव्य आनंद की प्राप्ति है। इसीलिए भगवान लीलाएं करते हैं दिव्य आनंद को प्रदान करने के लिए। तो कह शिव जी ने अब कहना शुरू किया, शिव जी ने पहला कारण दे दिया कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि उस व्यक्ति के घर नहीं जाना चाहिए जो दोष ढूंढता है। तो मानो अब जैसे पहले सती सोच रही थी कि शिव जी ये कहेंगे और उसको उसका उत्तर वो दे रही थी, अब शिव जी ऐसे सोच कर कह रहे हैं। तो मानो सती देवी पूछ रही हो कि आप बोल रहे हैं कि वो दोष ढूंढते हैं, लेकिन उनके अंदर बड़े गुण हैं, तपस्या है, वित्त है, यहां पर वर्णन किया गया उन गुणों का कि कैसे उनके अंदर बहुत सारे गुण हैं, तपस्या, वित्त, ज्ञान इत्यादि, क्या उनके अंदर गुण नहीं है? जो गुण इस इस जगत में किसी को श्रेष्ठ बनाते हैं, जैसे वित्त है, तप है, विद्या है, वय वय यानी युवा अवस्था है, तो ये सारे गुण उनको श्रेष्ठ बनाते हैं, वो उनके अंदर गुण है, तो क्या उसके कारण नहीं जाना चाहिए? तो उसका उत्तर देते हैं शिव जी। शिव जी कहते हैं भले ही किसके अंदर वो गुण हो, किसी व्यक्ति के अंदर, लेकिन अगर उसके हृदय में द्वेष है, वो किसी महान व्यक्ति का अपमान करता है, शिव जी कहते हैं अगर उसको अपने उस चीज का अहंकार हो गया, अगर उसको उन चीजों से अहम बढ़ गया है, अपनी विद्या से, अपने वित्त से, अपने तप से इत्यादि, ये ऐश्वर्य हैं, लेकिन इन ऐश्वर्यों के कारण अगर उसके हृदय में अहंकार बढ़ गया है, तब फिर उसके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह अहंकारी है। प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि जैसे दूध, ये तो बहुत शक्तिशाली अमृत है, चमत्कारी पदार्थ है, लेकिन अगर सर्प के द्वारा उसको स्पर्श कर दिया जाए तो फिर वह जहर हो जाता है। तो इसीलिए सारे गुण हैं, लेकिन अगर उसमें द्वेष आ गया तो फिर वो व्यर्थ है, या उसको अहंकार आ गया। और एक उदाहरण प्रभुपाद देते हैं कि कभी कभी सांपों के मस्तक पर मणियां होती हैं, तो सांपों के मस्तक पर मणि है, इसका अर्थ ये नहीं है कि सांप हमें कुछ करेगा नहीं, हम सांप को गले लगा सकते हैं। इसी तरह अगर किसी अहंकारी व्यक्ति के पास ऐश्वर्य है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हमें दुख नहीं देगा, हमारा अपमान नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में ये भी समझा रहे हैं कि अगर हमारे पास भगवान की कृपा से कुछ ऐश्वर्य आए हैं, तो उसका अहंकार नहीं होना चाहिए, भक्त को बहुत नम्र होना चाहिए, भगवान को पसंद नहीं है अहंकार, तो इसीलिए नम्रता का वर्णन। तो शिव जी ने ऐसा कह दिया, तो मानो सती देवी कह रही हूं कि ठीक है, लेकिन मैं उनकी सबसे लाडली पुत्री हूं, क्योंकि सबसे छोटी पुत्री है तो सबसे छोटी को बड़ा प्रेम करते हैं, तो मैं उनकी सबसे लाडली पुत्री हूं, कम से कम इसलिए तो चलिए। तो शिव जी कहते हैं कि हां, ये सही है कि वो तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, तुम उनकी बहुत लाडली पुत्री हो, लेकिन ये जान लो क्योंकि वो मुझसे द्वेष करता है, इसीलिए तुम्हारे को आदर नहीं देगा। ऐसा नहीं कि तुमसे द्वेष करता है, क्योंकि तुम मुझसे संबंधित हो इसलिए आपको आदर नहीं मिलेगा वहां पर। तो देखिए शिव जी बता रहे हैं कि एक द्वेषी व्यक्ति जब द्वेष करने लगता है, तो ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति से करता है, उससे जितने संबंधित है उन सबसे उसको द्वेष हो जाता है, उनको लगता है सारे एक ग्रुप में है, मेरा अलग दल, इनका अलग दल। तो अगर कोई व्यक्ति उससे मित्रता करता है तो वो भी उसका शत्रु हो जाता है, शत्रु का मित्र भी शत्रु से कहते हैं ना। तो मान लीजिए हम किसी से द्वेष करते हैं और दूसरा व्यक्ति जाकर उनसे कुछ देर थोड़ी देर बात कर लेता है, हमें उस व्यक्ति से भी द्वेष कि ये सब मिले हुए एक ही दल के। तो शिव जी कहते हैं कि भले वो तुमसे प्रेम करते हैं, तुम उनकी बड़ी लाडली पुत्री हो, लेकिन मेरे कारण, क्योंकि मुझसे द्वेष करते हैं और तुम मुझसे संबंधित हो, तुम्हारा अपमान ही होगा वहां पर, इसीलिए मत जाओ। और उसके बाद मानो सती देवी ये कहें कि आप ये सब चीजें इसलिए कह रहे हो क्योंकि आप मेरे पिता से घृणा करते हो, द्वेष करते हो, अर्थात मेरे पिता नहीं आप करते हो, तो इसलिए आप कह रहे हो नहीं जाना नहीं जाना। तो शिव जी फिर कहते हैं कि ये जान लो कि मैं उनसे कोई द्वेष नहीं करता, लेकिन उनको मेरे जो ऐश्वर्य है, मेरी जो महानता है, उससे वो द्वेष कर रहा है, क्योंकि शिव जी भले उनके जमाई हैं लेकिन हैं उनसे श्रेष्ठ। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि उसको द्वेष किस लिए है, क्योंकि मैं उससे श्रेष्ठ हूं, इस दृष्टि से वो मुझसे द्वेष करते हैं। तो देखिए हमारे द्वेष के कारण शिव जी दे रहे हैं कई कारण। पहला उन्होंने बताया कि अगर किसी द्वेषी व्यक्ति से कोई मिलता भी है तो हम उससे भी द्वेष कर बैठते हैं, लेकिन यहां वो कह रहे हैं कि मेरी स्थिति से उसको द्वेष है, अर्थात जब व्यक्ति इस जगत में बहुत बड़ा बनना चाहता है, बहुत चीजें चाहता है, प्रसिद्ध होना चाहता है, तो जो भी व्यक्ति उनके ऊपर है उससे द्वेष हो जाता है उसे, इससे ऊपर जाना चाहता हूं। एक दिन श्रील प्रभुपाद एक समय एक व्यक्ति से मिले, बहुत बड़ी कंपनी में वो काम करते थे। श्रील प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप क्या प्राप्त करना चाहते हो? तो उन्होंने अपने ड्रॉअर से कंपनी के जितने भी कार्ड्स थे अलग अलग लोगों के, अलग अलग अधिकारियों के, वो कार्ड निकाले, रखे टेबल पर, और उनमें से अपना कार्ड निकालकर सबसे ऊपर रखा। बोला, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है, मतलब इन सबसे ऊंचा बनना चाहता हूं मैं, इन सबसे श्रेष्ठ, कंपनी में टॉप पे जाना चाहता हूं मैं, ये मेरे जीवन का उद्देश्य। तो यहां शिव जी यही बता रहे हैं। तो इसलिए हमें द्वेष नहीं करना चाहिए किसी की महानता से। अगर कोई व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छे गुण है, महान है, तो हमें उसका आदर करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए उससे। और द्वेष के कारण हम हमेशा उसको नीचे खींचने का प्रयास करें। या तो व्यक्ति जब अपने से ऊपर किसी व्यक्ति को देखता है तो अगर उसके ऊपर नहीं जा पाता तो उसको नीचे खींचने का प्रयास करता है कि वो नीचे आ जाएगा तो हम बराबर हो जाएंगे। ऐसा द्वेष है। तो शिव जी ने कहा, मैं नहीं द्वेष करता हूं, वो मेरी स्थिति से द्वेष करता है, उसको मेरी महानता से द्वेष है। तो मानो पार्वती देवी ने कहा हो कि ठीक है, अगर आप द्वेष नहीं करते उनसे तो फिर आप उठ के खड़े क्यों नहीं हुए? सही है ना? अरे आप कहते हो मैं कोई द्वेष नहीं करता, मैं उनका आदर करता हूं इत्यादि, तो आए तो वो उठ के क्यों नहीं खड़े हुए? आप बताओ। पार्वती भी, सती देवी भी, ऐसे भगवान शिव जी सोच रहे हैं कि सती अब ये कहेगी, तो पहले ही उत्तर दे रहे हैं उसका। तो सती ने सोचा कि ठीक है, अगर द्वेष नहीं तो उठ के क्यों नहीं खड़े हुए? आपको उठ के खड़ा होना था, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती, खड़े हो गए होते अभी सारी तकलीफ नहीं होती, तो द्वेष आपके अंदर है। तो उस समय वो कहते हैं कि हाँ, साधारणता जब संबंधियों से मिले इत्यादि मिले तो हमें उठकर खड़े होना चाहिए, हमें स्वागत करना चाहिए, ये नियम है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति के हृदय में विराजमान भगवान को आदर देता है, वो उस व्यक्ति को आदर नहीं देता है, ये जान लो। बहुत सुंदर बात शिव जी कहते हैं। इसीलिए हमें हरेक का सम्मान करना चाहिए। नलकुवर मणिग्रीव अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं कि हे भगवान, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम हरेक वस्तु को जगत की प्रणाम कर सकें, क्योंकि उसमें आपका वास है। और यही शिव जी कह रहे हैं कि प्रणाम करने का सच्चा उद्देश्य ये नहीं है कि हम उस व्यक्ति को, उसके धन को, उसकी प्रतिष्ठा को मान सम्मान दें। हम मान सम्मान देते हैं उसके अंदर, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो मान सम्मान देता है उसके अंदर विराजमान भगवान को। इसीलिए भगवान को सम्मान देना चाहिए। तो मैं शरीर को नहीं देता, मैं भगवान को देता। तो मानो सती देवी ने पूछ लिया हो, दक्ष के अंदर भगवान नहीं दिखाई दिए आपको? तब क्यों नहीं खड़े हुए? चलो ठीक है, आप ये कहते हो कि आप सबके अंदर परमात्मा को, अरे तो उसके अंदर भी देख लेते, दक्ष के अंदर भी, कि उसके अंदर नहीं है क्या? अच्छा प्रश्न है ना। सारी तरह से शिव जी को, मतलब शिव जी सब सोच रहे कि ये यही कहेगी, इसलिए पहले से उत्तर दे रहे, तो क्यों नहीं खड़े हुए आपको? तो एक के बाद एक शिव जी ने कहा, द्वेष नहीं है, द्वेष नहीं तो खड़े क्यों नहीं हुए? अरे इसलिए नहीं खड़ा हुआ कि भगवान को देना चाहिए परमात्मा को, तो परमात्मा सबके अंदर है ना, दक्ष के अंदर भी है, हाँ तो फिर क्यों नहीं देखा आपने? फिर दक्ष के अंदर परमात्मा को देखकर खड़े हो जाना चाहिए था आपको। तो उस समय बहुत सुंदर श्लोक वो कहते हैं, ये भगवान का वर्णन करते हुए वो कहते हैं, सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदि यते तत्र पुमान पावृतः सत्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो यादोक्षजे मे नमसा विधीयते। वो कहते हैं कि मैं शुद्ध कृष्ण चेतना में, इसका अनुवाद हम पढ़ना चाहेंगे, मैं शुद्ध कृष्ण चेतना में भगवान वासुदेव को सदैव नमस्कार करता रहता हूँ। कृष्ण भावनामृत ही सदैव शुद्ध चेतना है जिसमें वासुदेव नाम से अभिहित श्री भगवान का बिना किसी प्रकार का दुराव का अनुभव होता है। तो शिव जी कह रहे हैं, अब ये बड़ा जटिल प्रश्न था सारी तरह से, पहले तो आपको द्वेष है, नहीं मुझे द्वेष नहीं है, तो फिर अब उठे क्यों नहीं, मैं भगवान को प्रणाम करता, तो भगवान क्यों नहीं देखे। तो शिव जी कह रहे हैं उस समय मैं समाधि में था, तो ये उत्तर यहां वो दे रहे हैं, इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण उत्तर है। तो कह रहे हैं कि मैं शुद्ध कृष्ण चेतना में भगवान वासुदेव को सदैव नमस्कार करता हूं, तो उस समय मैं भगवान के चिंतन में था, मैंने देखा नहीं, मैं सदैव केवल श्री कृष्ण का स्मरण करता रहता हूं, मैं समाधि में था। तो सच्ची समाधि क्या है? समाधि ये नहीं है कि हम कहीं पर जाकर बैठ जाएं, अपने आसपास दीवार बना लें, अपने आप को बंद कर लें और कह दें ये ठीक है, ये एक प्रकार की समाधि मानी जाती है। लेकिन कृष्ण भावनामृत में सच्ची समाधि ये है कि हम श्री कृष्ण का स्मरण हर समय करें, ये सच्ची समाधि। इसलिए समाधि लेनी है तो हमें अभी लेनी चाहिए, मरने की आवश्यकता नहीं है समाधि लेने के लिए, अभी इसी समय से कृष्ण का स्मरण शुरू कर दे। जैसे शिव जी कह रहे हैं कि मैं हमेशा समाधि में रहता और इसलिए मैंने देखा नहीं, उनका अपमान नहीं किया मैंने, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं तो भगवान को देता हूं और मैं दक्ष को भी आदर देता, लेकिन उस समय मैं समाधि में था, क्या कर सकता। तो फिर उन्होंने अंतिम इनको चेतावनी दी सती देवी को कि देखो तुम वहां नहीं जाना, क्योंकि अगर आप वहां जाओगे और वो मुझसे द्वेष करता है इसीलिए आपका भी अपमान कर देगा, और अगर आप वहां पर गए, देखिए स्पष्ट बता रहे हैं शिव जी, अगर आप वहां पर गए और आपका अपमान हुआ, आपकी ओर ध्यान नहीं दिया दक्ष ने, तो आपको बड़ा अपमानित अनुभव होगा, और इतना कि हो सकता है आपकी मृत्यु हो जाए। पहले से ही चेतावनी दे दी शिव जी ने कि मत जाओ, इतना अपमान होगा, हो सकता है कि आपकी मृत्यु हो जाए। तो इतना कहकर शिव जी चुप हो गए। तो अब अगले अध्याय में वर्णन किया जाएगा कि सती देवी ने इनकी बात को माना या नहीं माना, और फिर